भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे
Krishna
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौरांग भजिया भजो हरी बोल बहुत आवाज आ रहा है क्या क्या और जो से मिक्स फिक्स मिक्स क्या करना चाहिए हरी बोल हरी बोल अभी हले हलो हरे ऐसा ही आवाज हाँ हरी बोल कुछ ठीक कर दिया अभी तुमने और भी करो कुछ हमको तो पता नहीं क्या है लेकिन हरी 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 और गौरांग भजिया कैसे गौरांग को भजे दो बाहु तुलिया हाँ ठीक है ना बंगला आप बंगाली माता जी बंगाल की है मोक्षदा माता जी है तो दो बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेरावरे जो गाते हैं बोलते स्पष्ट सुनाई देना चाहिए सबको गौरांग जपिले गौरांग भजले हय दुखे रव सान रे जो गौरांग को गौरांग भगवान का नाम हरे कृष्णा को जपता है भजता है हाय दुखेर अवसान रे फिर दुख से मुक्त होगा आपको सुनाई दे रहा है थोड़ा कष्ट हो रहा है ना आपको मतलब सुनने में हरी 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 और हरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare
जागो जीव जागो शरीर जागो नहीं शरीर जागो नहीं जीव जागो हाँ आपको सुनाया देता है आप बताओ सुनाई दे रहा है कि मुझे बता दे बताया करो जीव जागो शरीर जगने पर अभी जीव नहीं जगता जब शरीर जगता है तो इतने महाप्रभु पुकार रहे हैं जीव जागो गोरा चांद बोले गौर चंद्र बुला रहे हैं पुकार रहे हैं हे जियो जागो कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले कब तक पड़े रहोगे सोए रहोगे कहा माया पिशाची के गोद में कब तक सोए रहोगे हे जियो जागो इन औषधि माया औषधि लेके आया हूं हरि नाम औषधि है इसका पान करो औषधि माया नसी भर लगी हरि नाम महामंत्र लहो तुम्हें मागी। आप हरि नाम को स्वीकार करो, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, जीव को जीव से निवेदन कर रहे हैं भगवान। गौर लीला में, गौर कथा, कथा तो कुछ कम है, कीर्तन ही ज्यादा करते रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की कथा लीला, मुख्य लीला तो कीर्तन लीला है। अधिकतर महाप्रभु ने कीर्तन किया, साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य अपने कीर्तन के लिए विख्यात है। तो छोटे ही जब थे, पालने में थे, पालना जानते हो, आप भी थे कभी पालने में, वो दिन याद है। तो जैसे आप रोते होंगे, रोए होंगे, तो महाप्रभु भी उनकी लीला में बाल सुलभ लीला खेल रहे हैं, तो महाप्रभु भी रोया करते थे पालने में, झूले में। तो एक दिन सची माता ने देखा, सोच ली कैसे क्या किया जाए, बालक खूब रो रहा है, कुछ खिलौने दिए, कुछ गुलाब जामुन खिलाए, बंगाल में खूब चलता है गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लेकिन बालक रोना बंद नहीं करा। मैं यशोदा कहने जा रहा था, वैसे यशोदा ही बनी है अब सची माता, और ये मायापुर ही है गोकुल। गोकुल वृंदावन नवद्वीप में वही मायापुर है, और गोकुल के नंद बाबा यशोदा वही है जगन्नाथ मिश्र और सची माता। वृंदावन में 12 बन है, द्वादश कानन है, जहां सब लीला कैल श्री नंद नंदन। जिन 12 बनों में नंद नंदन, यशोदा नंदन, श्री कृष्ण अपनी लीला खेले, वही कृष्ण अब श्री कृष्ण चैतन्य बने हैं। तो वहां द्वीप है, या बन है तो वहां द्वीप, द्वीप समझते, द्वीप आइलैंड, तो नवद्वीप है, सीमंत द्वीप है। पहला द्वीप कौन सा है? सीमंत द्वीप। दूसरा द्वीप है, द्वीप है गोद्रुम द्वीप। तीसरा द्वीप है मध्य द्वीप। चौथा द्वीप है कोल द्वीप। कोल मतलब वराह भगवान ही होते हैं, वराह भगवान की आराधना वहां हुई। चौथा की पांचवा 1 2 3 4 5वां है ऋतु द्वीप, ऋतु ऋतु अलग अलग ऋतु होते सीजन्स, ऋतु द्वीप। बाद वाला द्वीप है जान्हू द्वीप, जान्हू मुनि का द्वीप, और अगले वाला द्वीप है मोददद्रुम द्वीप, और उसके आगे वाला और आठवां द्वीप है रुद्र द्वीप, और नौवा और अंतिम द्वीप है अंतरद्वीप। तो जैसे ये तो छोटा ही फूल है, ये अगर कमल का पुष्प होता आठ पंखुड़ी वाला तो आठ अलग अलग द्वीप, एक एक द्वीप आठ पंखुड़िया, और मध्य में है अंतरद्वीप। तो अंतरद्वीप में है मायापुर, और मायापुरी है गोकुल। अगर वहां गोकुल है तो फिर मथुरा भी होनी चाहिए, यहां मथुरा भी है। तो अगर मथुरा है तो फिर कंस जी का क्या हुआ, कंस भी वहां पधारे। गौरांग महाप्रभु की लीला में कंस की भी भूमिका है। इस समय वध तो नहीं हुआ, गौरांग महाप्रभु ने वध नहीं किया। भिन्न प्रकार से वे वध किया करते थे, बस दुष्टों की दुष्टता का दमन किया करते थे, आसुरी प्रवृत्ति को वो नष्ट किया करते थे। उनके भावों में, भावना में परिवर्तन, क्रांति लाते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। पर हर दुष्ट का संहार करना है, विनाशाय च दुष्कृताम, तो फिर शायद कोई बचता ही नहीं, हर दुष्ट का संहार ही करना है। महाप्रभु ने, उनकी पॉलिसी थोड़ी भिन्न रही। एक समय जगाए और मधाए लीला में, जगाए मधाए उद्धार, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, तो हरिदास ठाकुर है ब्रह्मा और नित्यानंद प्रभु है बलराम। इन दोनों की प्रचार की टीम, टीमों में से हमारे भक्त भी टीम बना के प्रचार में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, प्रति घरे गिया, हर घर में जाओ और कहो सबसे, क्या कहना है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस आदेश का पालन करने हेतु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु हर रोज प्रचार के लिए जाते। लेकिन एक दिन जब गए थे प्रचार में, तो उन्होंने भीड़ देखी, और भीड़ पास में गए तो देखा कि भीड़ के मध्य में दो बदमाश शराबी, अब तो दिल्ली में भी खूब शराब, हरियाणा में और भी सस्ती हो गई, ऐसा कुछ आपसे कोई, आप तो दूध पीने वाले हो तो आपसे ये संबंध नहीं है, लेकिन शराबी बहुत खुश हो गए थे। तो ऐसे शराबी वहाँ दो शराबी, वो तो दो ही थे, अब तो हजारों हो गए, दिल्ली के गलियों में टाई पहनने वाले जेंटलमन, जेंटलमन। जब व्यक्ति शराब पीता है तो जेंटल नहीं रहता, इज नो मोर जेंटलमन। इसलिए एयरपोर्ट के सिक्योरिटी से जब पास होता है तो हैंड्स अप, तो वो कैसे रहा है, आई जस्ट यूज दिस टॉयलेट और ऊपर लिखा है फॉर जेंटलमैन, ऐसा कहता है आई जस्ट यूज द टॉयलेट फॉर जेंटलमैन, जो भी है बहुत जांच पड़ताल होती है, किसी को छोड़ते नहीं, हरे कृष्ण वालों को भी छोड़ते नहीं हो। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु उनको प्रचार कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन ये बदमाश समझने वालों में से नहीं थे। तो एक ने पत्थर कुछ फेंका नित्यानंद प्रभु के भाल में से खून टपकने लगा, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को इसका पता चला। कैसे? किसी ने मोबाइल वगैरह नहीं किया, महाप्रभु कैसे पता चला होगा, भगवान है आप कहोगे, वे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कैसे है, क्यों है, सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वो सर्वज्ञ भी हो सकता है कि नहीं, हम तो यही है, हमको यहां का पता है, हम तो ऊपर वाले कक्ष में नहीं है, लेकिन जो यहां भी है और वहां भी है उसको यहां का भी पता है और वहां का भी पता है, और जहां जहां वे है वहां वहां का पता है। तो कोई स्थान है जहां भगवान नहीं है, तो एक दृष्टि से वहां भगवान वहां उस सीन पर नहीं थे, किंतु भगवान तो सर्वत्र है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब पधारे तो उनके हाथ में सुदर्शन, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, तो नित्यानंद प्रभु रोके चैतन्य महाप्रभु को, नहीं 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 प्रभु, नॉट इस एज में, इस युग में ऐसे शस्त्र का उपयोग नहीं होगा। परशुराम ने कुल्हाड़ी का उपयोग किया था, राम धनुष्वान और श्री कृष्ण सुदर्शन, और वराह भगवान के पास गदा थी, तो हर अवतार में कार्य तो वही है, परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, या पद्म शंख गदा चक्र, इसमें से दो चिन्ह तो भक्तों के लिए है, कमल का पुष्प और शंख भक्तों के लिए है, और असुरों के लिए है गदा और चक्र। तो हुआ तो फिर तो चक्र अदृश्य हुआ प्रभु की इच्छा से। सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। तो सांगो पांगास अंग उपांग भगवान के जो पार्षद परिकर है वही अस्त्र शस्त्र का कार्य करेंगे, और उनके पास तो शस्त्र है तो हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये शस्त्र है, इट्स अ वेपन। कुछ समय पहले हमने कहा ये औषधि है, औषधि है या शस्त्र है, अमृत है, कई है इसके नाम। ये स्वयं भगवान ही है नाम, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो जगाई मधाई इन दो बंधुओं ने, ये ब्राह्मण परिवार के थे लेकिन दुनिया का ऐसा कोई पाप बचा नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। पांच सौ वर्ष पूर्व के ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति, ऐसे ब्राह्मण। तो इन दो जगाए मधाए भाइयों ने गौर नित्यानंद के चरणों का आश्रय लिया, क्षमा याचना मांगी, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमसे कोई गलती होती है, अपराध होता है, तो इन शब्दों में हम क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो उन्होंने वैसे ही किया और वादा किया, आज से हम चार नियमों का पालन भी करेंगे। इस्कॉन में जो चार नियम चलते हैं, ये भागवत धर्म के नियम है, चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किया फिर आगे उस उन नियमों को। आज से हम मांस भक्षण नहीं करेंगे, मांस मदिरा ना पहले मांस ही कहते हैं, मांस मछली अंडा, अभक्ष भक्षण नहीं होगा। आज से हम संकल्प लेते हैं नशापान नहीं करेंगे हम, यहां तक कि चाय भी हम नहीं पियेंगे। को आप भी नहीं पियोगे, आप भी कर रहे के संकल्प अच्छा है, जैसे हम आइडिया दे रहे कुछ। चाय भी नहीं पियेंगे और पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं होगा हमसे, आज से ऐसा नहीं होगा करते। और जुआ नहीं खेलेंगे हम, नो गैम्बलिंग। फिर करोगे क्या? हम लोग कीर्तन करेंगे। तो इन दोनों भाई आगे बहुत बड़े कीर्तनीय कीर्तनकार हुए, भक्त हुए। उन्होंने गंगा के तट पर घाट बनाया, जगाए मधाए घाट उसका नाम हुआ। उस घाट पर जो भी यात्री आते उनका बड़ा सत्कार सम्मान करते, ये जगाए मधाए उनको प्रणाम करते, माल्यार्पण करते, सारी सुविधा यात्रियों की सेवा। दीन ही नयत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाए मधाए। तो दीन हीन जो भी लोग है उनका उद्धार होगा, कौन उद्धार करेगा? हरि नामे उद्धारिलो। और कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? हा हा, तार साक्षी जगाए मधाए, जगाए और मधाए साक्षी है। कुछ वर्ष पूर्व हम एक स्थान, काटवा नाम का स्थान है नवदीप मायापुर से कुछ दूरी पर, गंगा के तट पर ही पदयात्रा करते करते हम वहां पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो हमको पता चला ये जगाए मधाए की समाधि इस नगरी में है। हम हैरान हो गए, है ना, क्योंकि जगाए मधाए बाद में तो महान वैष्णव हुए उसका थोड़ा अधिक कम स्मरण होता है, अधिक स्मरण तो उनके बदमाशी का। और फिर सुना क्या उनकी समाधि है, क्या कह रहे हैं उनकी समाधि, चगाई मदाई की समाधि। हाँ हाँ आप आइए हमारे साथ आइए। तो हम जब देखने गए तो भक्त गए, समाधि भी थी और क्या हो रहा था वहाँ, हरि कीर्तन 24 hours a day, 24 घंटे अखंड कीर्तन हो रहा है 500 सालों से। इस हरि नाम से इतना उनकी उनकी आसक्ति और इतना प्रेम, समाधि में जहां समाधि है आचार्यों की, क्योंकि वह वे निवास करते हैं ऐसी मान्यता है, तो उनके प्रसन्नता के लिए आज भी वह कीर्तन हो रहा है। तो महाप्रभु महाप्रभु की लीला अब आज भी चालू है, वैसे नवद्वीप में ही नहीं, ये जो संकीर्तन आंदोलन फैल रहा है और कई सारे असंख्य जगाई और मधाई का उद्धार जो हो रहा है आज भी हो रहा है कि नहीं? आप में से कोई थे जगाई मधाई? माताएं भी जगाई मधाई थी। आप अपना पूर्व आश्रम का जीवन देखोगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस, जगाई मधाई के कुछ लक्षण तो थे जगाई मधाई, अब गौर कथा का श्रवण हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, पहले शराब की बोतलें पीने वाले अब चाय की ओर देके भी थूकते हैं, थू तुच्छ है। और फिर देश विदेश में श्रील प्रभुपाद जहां जहां गए, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो महाप्रभु निमित्त बना रहे हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को बहुत बड़ा निमित्त बनाए, इस अर्जुन को निमित्त बनाए उस महाभारत की युद्ध में, तुम निमित्त बनो। तो श्रील प्रभुपाद सेनापति भक्त, प्रभुपाद कौन थे? सेनापति भक्त, सेनापतियों के भक्तों के सेनापति, भक्तों के सेनापति। कहां कहां तक गए प्रभुपाद, सात समुद्र पार करके गए और संसार की प्रदक्षिणा की उन्होंने 14 बार, पृथ्वी की प्रदक्षिणा की श्रील प्रभुपाद ने कुछ कम ही सालों में। और हजारों शिष्य थे, हाँ हम भी 4 नियमों का पालन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में लोग तैयार हो गए, अमेरिका, यूनियन, मॉस्को, कुछ दिन के लिए प्रभुपाद मॉस्को में थे तो एक व्यक्ति थे, यस आई विल फॉलो फ्रॉम टुडे, मैं संकल्प लेता हूं। तभी एक के प्रभुपाद जब गए तो एक व्यक्ति मिला तैयार हुआ चैतन्य महाप्रभु का क्या आंदोलन को स्वीकार करने वाला, अब कुछ बस कुछ साल पहले शायद द न्यूज वीक मैगजीन में आया था, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन फॉर्मर सोवियत यूनियन इज हरे कृष्णा। रशिया में सबसे बड़ी रफ्तार से दावाग्नि की तरह फैलने वाला कोई धर्म है तो कौन सा? हरे कृष्ण धर्म। न्यूज़वीक आपने उसका, आप जानते हैं उसका गौरव गाथा न्यूज़वीक ने, और उसमें लिखा था कुछ साल पहले कि हरे कृष्ण के फॉलोअर्स रशिया में कितने हैं, 7 लाख फॉलोअर्स लिखा था, 700,000 फॉलोअर्स। और कितनी असंख्य भगवत गीता एज इट इज रशियन भाषा में, और कितने भद्र पुरुष महिलाएं फुल टाइम भक्त बने हैं, उनकी जीवन शैली लाइफ स्टाइल, हमारे मॉल में भी आजकल चला स्टाइल या लाइफ स्टाइल, जिसको हम कहते हैं ज्यादा तो नहीं कहेंगे डेथ स्टाइल है वो, जिस स्टाइल का हम लाइफ स्टाइल का प्रचार हम कर रहे हैं वो डेथ स्टाइल है। मरेंगे तो हम कैसे मरेंगे? स्टाइल से मरेंगे, स्टाइल के साथ मरेंगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पालने में हमने लटका दिया, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु पालने में, और सची माता सोच रही है ये रोते हुए बालक को कैसे रोका जाए। तो सोच ही रही थी तो उसके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम निकला तो बालक झट से रोना बंद किया, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा है हरे कृष्ण। फिर सची माता गाती रही और बालक का रोना बंद हुआ। अब सची माता को युक्ति पता चली, बालक अगर रोता है तो रोकने का उपाय हरे कृष्ण। तो जब जब रोता बालक सची नंदन या निमाय, तो यशोदा रोकने के लिए कीर्तन कर। ये समाचार फैल गया पड़ोस में, तो पड़ोस की माताएं भी आ गई सच की झूठ पता लगवाने के लिए। और उस दिन बालक रोने के मूड में नहीं है तो भी उसको रुलाती माताएं, उसका क्या कहते हैं उसको, पिंचिंग या कुछ, हाँ चुप चुप कर। और फिर जब फिर रोने लगता तो फिर सारी घेराव करती निमाय को और कीर्तन करती, तो फिर निमाय चैंटिंग डांसिंग बड़ा प्रसन्न। तो इस प्रकार मुलाचे पाय पालण्यात दिसतात, ये मराठी में कहावत हो गया, आपकी हिंदी में भी होगी ऐसी कुछ। छोटे बालक के का भविष्य या पालने में पता चलता है उसके भविष्य के लक्षण। हाँ क्या ऐसा कुछ है? आप सभी साथ में बोल रहे हो इसलिए मुझे तभी, लेकिन आप है कहावत होगी तो अलग अलग भाषा में चलती है। तो बालक भविष्य में क्या करेगा उसका पता पालने में बालक है तभी पता चल रहा था। ये खूब कीर्तन करेगा, अभी कीर्तन में इतना आकर्षण इतनी रुचि दिखा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु एक समय, एक दिन की बात है, जगन्नाथ मिश्र और सची माता प्रांगण में बैठे थे, निमाय कुछ दूरी पर खेल रहा था, तो जगन्नाथ मिश्र पुकारे, ए निमाय निमाय निमाय, तो निमाय भागे दौड़ा आया, यस डैडी। पिताश्री कहिए, वो घर में वो ग्रंथ है ना, उसको ग्रंथ को लेके आओ। तो निमाय भागे दौड़ा गया घर में। तो घर में जब द्वार से प्रवेश किया, जा रहा था घर में, अभी घर में ही अंदर ग्रंथ लेने के लिए, और ग्रंथ लिया भी और अब द्वार की ओर आ रहा था, तो जगन्नाथ मिश्र गए, सची सुन रही हो? हा हा। तो ये दोनों पति पत्नियों ने कुछ नुपुर की आवाज सुनी, क्या निमाय को तुमने कुछ नुपुर कुछ पायल पहनाए है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई मैंने नहीं पहनाया। उनके चरणों में तो निमाय बाहर आया, उनको रुंझुन 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 रुंझुन, कोई चल रहा है और उसी के साथ रुंझुन आवाज, नुपुरों की आवाज, पायल की कुछ झनकार। तो निमाय ने दे दिया ग्रंथ, लीजिए पिताश्री ग्रंथ, ग्रंथ दे दिया और खेलने के लिए निकल पड़ा निमाय। तो दोनों पति पत्नी घर में गए, वो जानना चाहते थे कि और भी के कोई घर में है क्या जिसके चरणों के पायल की झनकार या ने हम जो रुंझुन की आवाज सुनी, निपुरों की आवाज। तो वहां जाते हैं तो और एक आश्चर्य वाली बात उन्होंने देखी, उन्होंने चरण चिन्ह देखे, चिन्हांकित उनके कक्ष का जो फर्श था उसमें कई सारे चिन्ह थे, छोटे बालक के चलने के चिन्ह थे और उन चिन्हों के अंदर चिन्ह थे, भगवान के चरणों के चिन्ह। चिन्ह में कई झंडा होता है, मीन मछली होती है, कमल होता है, अलग अलग 11 चिन्ह, एक ऐसे और कुल 18 है, एक में कुछ चिन्ह दूसरे में एक चिन्ह, और हर चिन्ह का अलग अलग भाव भी है, चक्र भी है। तो उन चरणों का जब हम नमस्कार करते हैं, भगवान के चरणों को नमस्कार करते हैं हम, तो भगवान के चरणों में जो चक्र है उस भक्त की रक्षा के लिए तैयार होता है। इस प्रकार हर चिन्ह का चिन्ह आदान प्रदान करता है उनके साथ, जो माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो जो भगवान कहते हैं। तो चिन्ह केवल ऐसे ही रंग के ऊपर से पेंटिंग वगैरह किया ऐसा नहीं है, भगवान के चरणों का चिन्ह वो सदैव है वह, और वो सक्रिय है चिन्ह। तो उन्होंने चिन्ह देखे तो दोनों पति पत्नियों ने सोचा कि आ और किसके हो सकते ये चिन्ह, हमारे घर के जो विग्रह है, उन्हें सोचा उनके घर में जो विग्रह मूर्तियां या शालिग्राम शिला, उन्होंने आज रूप धारण किया और हमारे घर में चले भगवान, भगवान की बड़ी कृपा हुई है हम पर, जो ऑल्टर पर ही रहने वाले भगवान आज हमारे घर में उतरे और चले हैं, तो चलो हम भगवान का आज विशेष अभिषेक करते हैं, भगवान को पुष्प वृष्टि करते हैं, भगवान के लिए 56 भोग खिलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, भगवान ने इतनी कृपा करी हम पर रूप धारण करके भगवान हमारे घर में चले। तो दोनों पति पत्नी उस दिन बड़े व्यस्त रहे,
बड़े प्रसन्न थे,
उत्सव मनाया उन्होंने, विग्रह की आराधना, विशेष आराधना की। और ये सब निमाय देख रहा था, क्या व्हाट इज द मैटर, आज कुछ विशेष उत्सव है। वो दिखा रहा है, देखो तो चिन्ह नहीं देख रहे हो क्या, हमारे भगवान के चरणों के चिन्ह है। तो निमाय बाहर आके हंस रहा था, ठगाया मैंने। वो चरण चिन्ह किसके थे और किसी के नहीं थे, निमाय के चरण चिन्ह थे। नुपुर हो या नहीं हो, ध्वनि तो निकाल सकते हैं। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिन
जय सचिनंदन गौर हरि
जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि
जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि
जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय
सचिनंदन गौर हरि
जय सचिनंदन गौर हरि
हे
नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Gaur Hari Hari Bo,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोता तो क्या होगा गौरांगेर मधुर लीला गौरांग महाप्रभु की लीला कैसी है मधुर लीला गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला और जिनके कर्णों में और कर्णों से हृदय प्रांगण में लीला पहुंचेगी और इस लीला का मिलन होगा आत्मा के साथ श्रवण करता तो आत्मा ही है श्रद्धा से ध्यान पूर्वक कथा का जब श्रवण होता है भगवान ही अपने कथा के स्वरूप में कथा भी भगवान के एक स्वरूप है एक स्वरूप तो रूप है उनका रूप उनका विग्रह लीला भी भगवान के एक स्वरूप है तो इस लीला के श्रवण से आत्मा और लीला स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य का मिलन होता है और फिर हृदय निर्मल भेलोतार और वो श्रवण करता कर हृदय निर्मल होगा निर्मल मल रहित कैसा मल भुक्ति कामी मुक्ति कामी सिद्धि कामी ये मल है भुक्ति की भोग विलास की कामना ये मल है मुक्ति मुक्ति की कामना भी मल है और भी खराब मल है और सिद्धि कामी अलग अलग सिद्धियां ये भी कामना है निर्मल होगा कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत तो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु की लीला के श्रवण से निष्काम होंगे निर्मल होंगे और उसी के साथ होंगे शांत और कोई उपाय नहीं है
भगवान स्वयं ही शांत है, शांताकारम। कैसे भगवान? शांताकार के भगवान, शांताकारम भुजग शयनम। तो ऐसे शांताकार के भगवान के साथ जीव का योग के, भक्ति योग के माध्यम से जब संबंध स्थापित होता है तो फिर शांति करंट जैसे फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लोअर वन। तो वाह, भगवान विभू आत्मा है, हम अणु आत्मा है, तो विभू आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा की ओर से आत्मा की ओर शांति, शांति और बहुत कुछ, प्रेम, भक्ति। तो श्री कृष्ण जब छोटे थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो वे, अगर कृष्ण ही है तो कृष्ण से वो कुछ कम नटखट नहीं थे, बड़े नटखट थे। खूब शिकायतें आया करती थी, ऐसे वृंदावन में शिकायतें आया करती थी, कंप्लेन बॉक्स भर जाती थी नंद भवन के सामने वाली, कंप्लेन बॉक्स, शिकायत पेटी। और निमाय बहुत समय बिताया करता था गंगा के तट पर, स्नान करने का खूब शौक था निमाय को, गंगा में स्नान, जमुना में स्नान करने वाला वो कन्हैया लाल, अब सुंदर लाल बन के गौरांग महाप्रभु गंगा में स्नान, गंगा के तट पर कोई ध्यान कर रहा है, गायत्री कर रहा है, महाप्रभु जाके पानी में डूबते हो, उसके तंगड़ी को खींचते, पैर खींचते उसका, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी ने शिवलिंग लेके कोई आया है और बेलपत्ता चढ़ा के नमः शिवाय कर रहा है तो उसका शिवलिंग उठा के गंगा में फेंक देते, स्वाहा। शिव जी का अभिषेक, तुम तो थोड़ा ही जल छिड़का रहे हो, बूंद बूंद ही, चलो क्या करते हैं हम। शिव जी पहले थे, गंगा का प्रसाद सर्वप्रथम शिव जी को प्राप्त हुआ है, गंगा ने स्पर्श किया और शिव जी ने सेवा की है। वैसे नहीं तो भगीरथ महाराज का कार्य सफल नहीं होता, मैं आ तो जाऊंगी किंतु मुझे रोकने वाला भी तो चाहिए, वहां से आऊंगी इतनी गति से और मेरा इतना ओघ, इतना जल, तो पृथ्वी को शायद धक्का और अपने स्थान से हिल सकती है कुछ, तो हु विल स्टॉप मी। तो हुआ फिर और प्रयास करने पड़े, भगीरथ के प्रयास न भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रयास रहे भगीरथ राजा के, तो शिव जी तैयार हुए। तो गंगा पहले शिव जी के जटा में, गंगा तो भगवान के चरणों की गंगा है, भगवान के चरणों का जल है, शिव जी उनको, उस जल को अपने सिर पर धारण करते हैं। और इसीलिए भी वैष्णवानाम यथा शंभु उनकी ख्याति है, वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव शंभु है, शिव जी है। तो प्रभु कभी कभी निमाय, नटखट निमाय, शिवलिंग को जल में, गंगा के जल में रख देता, फेंक देता। कुछ नव युवतियां जा रही है कई सारी, उनके पास पूजा के पात्र है, पुष्प है, इत्यादि इत्यादि। ओ कहां जा रही हो? निमाय दूसरी ओर से आ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रही हो? तो हम जा रही है दुर्गा पूजा पार्वती पूजन के लिए जा रही है। किस उद्देश्य से? हमको ताकि सुंदर पति मिले, तो कह दिया ना नहीं, वो पार्वती या शिव जी की पूजा की, मेरी पूजा करो, वर्शिप मी। क्या जब ये उसी से लेके खड़ा हो जाता निमाय, और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूजा यही करो, मेरी पूजा करो। तो उसको नहीं समझते उनका भाव। निमाय अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, भगवत्ता जो गॉडहुड होती है, गॉडहुड भगवत्ता न षड ऐश्वर्य छिपाए थे। तो अन्य बालकों की तरह, अन्यों के भी बालक है, और सची माता का भी एक पुत्र है, अपने गली में रहता है, और आज कह रहे कि मेरी पूजा करो, हे चलो हटो, नहीं नहीं। तो निमाय कहते नहीं नहीं, मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं शाप दूंगा, बुढ़ा बुढ़ा मिल जाएगा। तुम तो कुछ ऐसा सुंदर पति की खोज में हो, मेरी पूजा नहीं करोगी तो एक तो बूढ़ा मिल जाएगा, और फिर कि और पहले और भी कई सारी पत्नियां उसकी है, ऐसे पति की तुम पत्नी बन जाओगी। तो भय के कारण फिर वो निमाय की पूजा करती। तो उम्र में बढ़ रहे थे निमाय, निमाय का विवाह का प्रस्ताव भी निकल आया, और निमाय का विवाह हुआ लक्ष्मी के साथ। उनकी दो पत्नियां होगी इस लीला में, एक लक्ष्मी और दूसरी विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया ओके, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। ये स्त्रियां कोई साधारण नहीं है, भगवान की अपनी जो नित्य भारिया है, शक्तियां है, भूदेवी श्रीदेवी, भूदेवी श्रीदेवी दक्षिण भारत में भी खूब चलता रहता है इन दोनों, भूदेवी श्रीदेवी की आराधना। तो भूदेवी श्रीदेवी बनी है लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया के विवाह के उपरांत चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश की ओर गए थे। चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंडफादर पितामह नीलांबर चक्रवर्ती उस प्रदेश के, उन दिनों में तो बांग्लादेश नहीं था, पूर्व बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल में गए। तो लक्ष्मी प्रिया प्रभु के विरह को सहन नहीं कर पाई, और फिर वो नहीं रही, चल बसी, दूसरा विवाह हुआ विष्णु प्रिया के साथ। बुद्धिमंत खान नाम के भक्त थे। बहुत बड़ा विवाह का उत्सव, विवाह महोत्सव, बहुत खर्चा किया उन्होंने। वो समय का मोस्ट एक्सपेंसिव मैरिज पार्टी उन्होंने अपने खर्चे से स्पॉन्सर किया। जो भी है आई विल पे फॉर। सुवर्ण सेन थे पहले सत्ययुग में, ये बुद्धिमान जो चैतन्य महाप्रभु के समय के बुद्धिमान सुवर्ण सेन थे, राजा सुवर्ण सेन। तो सत्ययुग में ही चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया था और कहा था कि मैं जब प्रकट होऊंगा कलयुग में तुम भी वहां रहोगे। तो वही सुवर्ण सेन बुद्धिमान नितिन खान रूप में वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु का फिर पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा परलोक से धारे। तो चैतन्य महाप्रभु गया जाते हैं, गया बिहार में श्राद्ध समारोह संपन्न करने के लिए। वह उनका मिलन होता है, मुलाकात होती है ईश्वरपुरी के साथ। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी इन्होंने माधवेंद्रपुरी से ही हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक उसकी शाखा बन गई। ब्रह्म मध्वा मध्वाचार्य का संप्रदाय आज भी चल रहा है, किंतु माधवेंद्रपुरी वहां से एक अलग शाखा बन गई और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बन गया। ये जो माधुर्य लीला है, श्रृंगार, उसके भाव, उसका रसास्वादन, उसका आस्वादन और प्रचार प्रसार माधवेंद्रपुरी से शुरू होता है। वे वृंदावन में भी रहे माधवेंद्रपुरी। श्याम कुंड के तट पर माधवेंद्रपुरी बैठक है, श्याम कुंड के तट पर, राधा कुंड के नहीं, श्याम कुंड के तट पर। और परिक्रमा करते करते गोविंद गोवर्धन की परिक्रमा करते करते हम जब पूछरी का लोटा के बाद जब उस पार जब हम गए परिक्रमा करते, एक यतिपुर आता, यतिपुर, तो ये यति मतलब सन्यासी, तो माधवेंद्रपुरी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो उनका गौरव गाथा तो उनके शिष्य ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु बन रहे हैं ईश्वरपुरी के शिष्य। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, ये महामंत्र उनको प्राप्त हुआ ईश्वरपुरी से। तब से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन। पहले तो निमाय पंडित विद्वान, बड़े विद्वान, बड़ी विद्वत्ता। भगवान ने इस अवतार में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार में अपना ज्ञान का प्रदर्शन, अपनी विद्वत्ता का भी प्रदर्शन किया। जब छोटे ही थे, उस वक्त विद्वत्ता नहीं, छोटे ही जब थे तब विद्या आरंभ संस्कार हुआ और निमाय लिखना प्रारंभ कर दिए, क उनके यहाँ ख, वो लिखते भी और वो कहते भी। लेकिन महाप्रभु के मुख से निकलने वाला क सुनने के लिए हजारों लोग वहां बैठ जाते हैं। क तो कह दिया, अभी अगला अक्षर कौन सा कहेगा या बालक, ख इतना मधुर उनके मुख से वाणी निकलती, क ख ग घ च छ ट ठ ड ढ प फ ब भ य र ल व। ये वर्णमाला लिखते लिखते जब चैतन्य महाप्रभु उसका उच्चारण करते तो उसको सुनने के लिए बड़ा मधुर, कुछ शब्द भी नहीं कह रहे, वाक्य तो भाषण भी नहीं दे रहे, वाक्य भी नहीं कह रहे, शब्द भी नहीं, बस अक्षर एक एक अक्षर कह रहे हैं, लिखते लिखते अक्षर कह रहे हैं, तो कई सारे लोग उसको बैठ के सुनते हैं। वो मधुर उनके मधुराक्षरम विद्यारम्भ। एक समय विद्या विलास की बात दिया उनके विद्वत्ता का, केशव कश्मीरी नाम के एक बड़े उस जमाने के विद्वान नंबर वन, तो सारे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा की कर रहे थे और जहाँ भी जाते वो शास्त्रार्थ करते और सभी को परास करते, और जो जिनकी डिफीट होती वो सब सारे उनके शिष्य बनते, फिर आगे बढ़ते, चुनौती देते, आ जाओ मैदान में उतरो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो सारे उत्तर भारत दक्षिण भारत की यात्रा करते 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 ये दिग्विजयी दिग्विजयी मतलब सारे दिशाओं में उनका विजय ही विजय हो रहा था। तो उस जमाने में वैसे नवद्वीप एक विशेष विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, नवद्वीप का बड़ा नाम था, बड़े विद्वान वहाँ के नवद्वीप के विद्वान पंडित, वहाँ का पांडित्य, और वहाँ एक विद्यानगर नामक नगरी भी है, सारे सारे वेद पुराण स्मृति श्रुति स्मृति सब वहाँ मूर्तिमान है, वहाँ निवास करते हैं। विद्यानगर में परिक्रमा में हम जाते थे, एक विद्यानगर भी है, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वहां भी जाते थे। गंगादास पंडित के टोल स्कूल को टोल कहा करते या बंगला में टोल, वहां पढ़ने जाते थे। तो उन्होंने एक दिन पढ़ने के बाद या शायद कुछ अलग अलग दिन भी हो सकता है, अपनी लिखने की जो लेखनी है उसको बो दिया उन्होंने जमीन में, ही प्लांटेड हिज पेन, तो उसे वृक्ष निकल आया, वृक्ष आया, तो वहां दो चार वृक्ष आज भी है। तो कहते हैं कि वैसे कुछ 20 लाख वृक्षों की योनियां है, 10 लाख लक्ष पक्षी है, 84 लाख में सारा बंटवारा है, तो 20 लाख जो वनस्पति या वृक्षों की योनियां है, दिस वन इज एडिशनल, ये जो वृक्ष उग आए हैं वो 20 लाख जो शास्त्रों में कहा है इतनी योनियां है वनस्पतियां है उससे ये कि और अधिक है, ऐसा और कहीं नहीं है वो वैसे वृक्ष पृथ्वी पर या संसार में। तो चैतन्य महाप्रभु जब विद्यानगर के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ उन्होंने वो वृक्ष अपने पेन से लेखनी को गाड़ दिया जमीन में, तो वृक्ष उगाया। तो ये तो केशव कश्मीरी अब नवद्वीप की ओर आ रहे थे, तो नवद्वीप के पंडितों को जब पता चला कि ओ केशव कश्मीरी आ रहे हैं। वो सोच रहे थे कि हम तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे इस पंडित का, दिग्विजयी केशव कश्मीरी का, तो वो अलग अलग बहाना बना के वो सब नवद्वीप से दूर चले गए, आउट ऑफ स्टेशन गए। आई हैव दिस बिजनेस, आई हैव दिस, मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी, मुझे जाना है। और फेस नहीं करना चाहते थे पंडित के साथ। और फिर उन्होंने ये भी मैसेज छोड़ा था कि पहले हमारे इस प्रदेश का एक बालक के साथ तो शास्त्रार्थ करके दिखा दे, अगर उसको डिफीट करता है ये दिग्विजय पंडित तो हम तो है ही, उसके बाद हम तो है ही, पहले बालक के साथ इसकी मुलाकात हो जाए। तो सारे पंडित जब वहां से गए तो बचे तो निमाय पंडित बच गए, निमाय पंडित। तो दिग्विजयी केशव कश्मीरी वहां पहुंचे। तो एक दिन दोनों साथ में थे, निमाय और दिग्विजयी पंडित, ये केशव कश्मीरी गंगा के तट पर थे। तो इस विद्वान ने क्या किया, गंगा की स्तुति में गंगा की स्तुति गाई, फटाफट वो मंत्र बोलते गया, फट 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 फट, जैसे तूफान की तरह एक्सप्रेस, एक स्तुति कही, दूसरी कही, तीसरी कही, हंड्रेड्स, एक सौ स्तुति के वचन, गंगा की स्तुति, गंगा के किनारे खड़े होके वो बक रहा था, कह रहा था एक के बाद एक स्तुति, एक के बाद। तो उन्होंने पूछा कैसी लगी मेरी स्तुति आपको, हाँ बढ़िया, बस वेरी गुड, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और फिर ये भी कहा, वैसे विस्तार से चैतन्य चरितामृत में सुनाया है लेकिन एक सैंपल हम कह रहे हैं। तो निमाय ने कहा, ओ आपने जो 64th जो स्तुति कही उसको रिपीट करो। तो उस पंडित ने वो थोड़ा कौन सी 64th, चैतन्य निमाय ने सारा कंठस्थ किया था, उसने सोचा कि शायद इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, मैं फटाफट कह रहा हूं और ये नई स्तुति है, कुछ मैं कुछ रिपीट तो नहीं कर रहा हूं, पहले किसी की स्तुति कंठस्थ करके आया हूं, कहीं प्रकाशित नहीं हुई है, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर। लेकिन निमाय ने सारी ए से जेड तक जितनी स्तुति के वचन कहे थे नोट किया था, उसके गुण और उसके दोष। अब महाप्रभु तो गुण भी कहे, वाह वाह, वेल डन वेल डन, लेकिन साथ ही साथ आओ कहो 64वां श्लोक कहो पुनः। और जब कहा 64th वर्स, तो तुमने कहा भवानी भरता, उसमें एक शब्द था भवानी भरता, तो भव की होती है भवानी, शिव की शिवानी, ये रुद्र की रुद्राणी, ये पति पत्नी है, एक शक्ति शक्तिमान। तो हुआ तो भवानी, भवानी मतलब हुआ भाव का, भाव की, शिव की पत्नी, क्या उल्टा भी, या पार्वती के पति, ओके कैसा, पार्वती के पति, भवानी तो शिव जी या पति है शिव जी और पत्नी है पार्वती, मतलब भवानी। लेकिन आगे भरता कहा तो दूसरे एक पति का संकेत हो रहा है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहे, भवानी भरता तो मतलब पति और पत्नी का, दोनों का नाम तो आ गया उसमें, लेकिन आप आगे जो भरता या भरतू कह रहे हो इससे ये संकेत होता है कि पार्वती का और भी कोई पति है, ऐसा दोष उन्होंने और उन्होंने मान भी लिया। तो केशव कश्मीर कहे, ये कैसे संभव हुआ आपको? मैंने जो स्तुति कही आपने पूरी कंठस्थ की। तो निमाय कहे, अगर सरस्वती की कृपा से अगर कोई स्तुति कह सकता है तो उसी सरस्वती की कृपा से कोई उस स्तुति को स्मरण भी कर सकता है। वही सरस्वती की कृपा तुम पर भी और मुझ पर भी। तो उस तो दोनों अपने अपने स्थान लौट गए, केशव कश्मीरी भी गए। तो उस जब लौटे तो उन्होंने विशेष आराधना की सरस्वती की, खूब प्रार्थना की। तो सरस्वती प्रकट हो गई, प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। तो सरस्वती से केशव कश्मीर जी पूछते, क्यों तुमने तो मुझे पूरा सहयोग नहीं दिया? मेरे मुखारविंद से कुछ गलत वचन तुमने, गलत स्तुति, गलत शब्द निकाले, मुझे परास्त किया तुमने। तो सरस्वती ने कहा, तुम नहीं जानते हो जिनके साथ तुम लड़ रहे थे, ये वाक युद्ध चल रहा था, शास्त्रार्थ कर रहे थे, मैं सरस्वती तो मेरे स्वामी है, वो निमाय तो मेरे स्वामी है। मैं उनकी दासी हूं। तो हुआ तो ये नहीं कि वैसे भगवान को सरस्वती पर निर्भर होना पड़ता है। सरस्वती का भी, सरस्वती के पास भी कोई विद्या है, ज्ञान है, तो उसके स्रोत तो भगवान ही है। नदी मिल जाती है समुद्र में तो नदी क्या है, मैं नदी हूं, मैं समुद्र को जल सप्लाई करती हूं, किसी नदी ने कहा तो ये क्या सच है? वो नदी भूल गई है किस बात को कि मेरा जल तो समुद्र से ही तो आया है, समुद्र का जल से ही फिर बादल बने, वर्षा हुई और वही जल मैं पहुंचा रही हूं, रिसाइकलिंग चल रहा है, ये जल तो मेरा कोई अलग से नहीं है। तो भगवान जब सांदीपानी मुनि के आश्रम में भी गए कृष्ण और वहां विद्या अर्जन कर रहे हैं, या यह सरस्वती कह रही है मैं विद्या का दान देती हूं, लेकिन केशव कश्मीरी को विद्या देने वाली ये सरस्वती स्वयं विद्या प्राप्त करती है जिनसे, वे है षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो अब वे निमाय जो गया पहुंचे हैं, जहाँ विष्णु पद भी है, भगवान का विष्णु पद है, वहाँ एक ही चरण चिन्ह का है और वहाँ फल्गु नदी बहती है, एक वहाँ नदी बहती है, उसका नाम है फल्गु, फल्गु रिवर। ऊपर से तो बालू ही बालू आपको दिखाई देगी लेकिन नीचे जल बहता है, थोड़ा खुदाई करो, बालू को हटाओ तो वह जल होगा। तो श्रील प्रभुपाद इनमें विषयांतर तो नहीं, लेकिन छोटी बात ये थोड़े में श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, हमारे भारत के जन्मे जो लोग हैं, कुछ ढक रहे ढके जा रहे हैं कलयुग के प्रभाव से, कुछ आच्छादित हो रहे हैं, कृष्ण भावना को भूल गए, ऐसा महसूस तो होता है। किंतु प्रभुपाद ने उनका फाल्गु नदी से तुलना की और कहा थोड़ा सा गहराई में आप देखोगे तो वहाँ कृष्ण भावना, वहाँ तरंग है, कृष्ण भावना का प्रवाह भारत के मनुष्यों में है। थोड़ा सा प्रयास से वो रिवाइवल, वो जागृति संभव है कृष्ण भावना की। तो उस गया में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरपुरी से उन्होंने महामंत्र प्राप्त किया, उनको उनके शिष्य बने। और अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लौट रहे हैं नवद्वीप की ओर, रास्ते में कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे महाप्रभु कीर्तन करते करते ही उन्होंने बंगाल में और फिर नवद्वीप मायापुर में प्रवेश किया। तो पहले का जो जब विद्वता का प्रदर्शन, जब वे पंडित थे, निमाय पंडित, वो स्वयं भी स्कूल चलाते थे, पहले तो पढ़े और फिर पढ़ाए भी औरों को। लेकिन अब जब हरि नाम को अपनाए तो वो गांभीर्य ऐसा लोग अनुभव करे, पहले से सीरियस नहीं रहा ये निमाय, जब से कीर्तन कर रहा है ऐसा भाव विभोर होता है, उसको कोई देह भान ही नहीं रहता है किस स्थिति में है, कैसे है, कहाँ है, कभी नाचता है तो कभी रोता है, आंसू बहाता है, कभी लौट जाता है धूली में, हे कृष्णा 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 कृष्णा, हे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा,
पाही माम रक्षा माम, इसे पुकारते रहता है सब समय। हुआ क्या, पागल तो नहीं हुआ? हाँ हाँ, हो सकता है कुछ मालिश करो, मालिश करो इसके सिर का, मालिश करना चाहिए। वो समझ, लोग सुझाव दे रहे थे, वे स्पेशल ब्राह्मी ऑयल या सम स्पेशल ऑयल, तो उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा, ऐसा पागलपन से बच जाएगा। ये करो वो करो, कई उपाय बताए जा रहे थे। और फिर वैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी अनुभव कर रहे थे, क्या हुआ क्या है मुझे। देख समय ईश्वरपुरी को पुनः जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि व मंत्र दिला गोसाई के बतार जपिते जपिते मंत्र करिल पाग। मुझे हुआ क्या है और आपने कैसा मंत्र दिया? किब मंत्र दिला गोसाई, हे गोस्वामी ईश्वरपुरी महाशय, कैसा मंत्र दिया आपने, क्या हुआ? जपिते जपिते मंत्र करिल पागल, मैं तो पागल हो गया इस मंत्र के उच्चारण से, मैं तो पागल हो गया, पागल हो गया। कैसा मंत्र है, कितनी शक्ति है इस मंत्र में, ये मुझे नचाता रहता है। इस महामंत्र के प्रभाव से वशीभूत होके मैं नाचता हूं, कभी रोता हूं, कभी गिरता हूं, कभी। तो ये तो पागल कौन नहीं है, हु इज क्रेजी, प्रभुपाद के समय हु इज क्रेजी, हु इज नॉट क्रेजी, कौन पागल नहीं है। कोई माया के पीछे, धन के पीछे, और कोई नर्तकी के पीछे पागल है, तो कोई कीर्तन में पागल है। कीर्तन कोई उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, नर्तकी कोई, तो नर्तकी के लिए कोई पागल है, तो कोई कीर्तन में पागल है। पागल तो सभी है, क्रेजी तो सभी है। तो इस पागल चैतन्य महाप्रभु के संग में जो भक्त थे, उनसे प्रभावित होके वे भी पागल हो गए। हम भी जब हरे कृष्ण भक्तों के संग में आ गए बंबई में 1972, तो कुछ ही दिन रहे, इतने में हमारे भाई आ गए। तो घर ले गए, तुमको आना होगा, नहीं आओगे तो मम्मी की हालत बड़ी खराब है, जी नहीं पाएगी तुमको। तो जब हम गांव में गए तो हम भी कुछ अच्छे स्टूडेंट, पहले अच्छे स्टूडेंट थे स्कूल में, तो गांव के लोग कहने लगे कितना अच्छा लड़का था, अच्छा था। तो पहली बार हम मुंडन किया, धोती कुर्ता पहन के जब गए तो गांव में सब चर्चा, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, क्या वो पागल हो गया, पागल हो गया। सेम थिंग, पागल हो गया, इन शब्दों में चर्चा हो, टॉक ऑफ द टाउन, पागल हो गया। और फिर वही सुझाव, कई सारे सुझाव भी आ रहे थे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कोई भूत पिशाच तो नहीं है क्या।
ज्योतिषी के पास जाके पता लगवा रहे थे कितने दिन ये ऐसा पागलपन रहेगा बता दो ज्योतिषी जी। तो उसको थोड़ा दक्षिणा चाहिए होता था, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। तो 40 साल तो बीत गए, उन्होंने कहा था ज्यादा समय नहीं था। तो हम भी श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए और हम भी पागल हो गए। तो पागल के साथ और क्या, कौन क्या बनेगा, पागल ही बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ कई सारे अब कीर्तन में झूमने लगे। और चैतन्य महाप्रभु धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हेतु तो प्रकट हुए थे। और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो इस धर्म की स्थापना अब प्रारंभ हो रही। तो शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित भी उनको कहते हैं, तो निमाय के घर से कुछ ही दूरी पर अब भी वो घर है वहां। उस घर में श्रीवास आंगन में या श्रीवास के घर में कीर्तन होने लगा, पूरी रात भर कीर्तन होता। लेकिन स्पेशल गैदरिंग, सिलेक्टेड गैदरिंग, गैदरिंग में केवल प्योर डिवोटीज, उत्तम अधिकारी, शुद्ध भक्त, 100% प्योर अगर है तो उसको एडमिट किया जाता है उस कीर्तन में। गेट पर उसका स्क्रीनिंग होता, तो कोई भी टींज, कोई गंध, कर्मकांड, ज्ञानकांड और कोई केवल विशेर भांड का गंध और धर्मों का और भावों का और आराध्य उनके है और तंत्र मंत्र से प्रभावित, सबको आउट, बाहर रखा जाता। केवल शुद्ध भक्तों के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, फिर सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, क्लोज कर्टन, बिहाइंड द क्लोज कर्टन चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता, पूरे रात भर कीर्तन करता, भाव विभोर होके कीर्तन करता, कीर्तन कीर्तन और नृत्य करते। और ये चल रहा था बहुत समय तक, श्रीवास आंगन में कीर्तन होता रहा। तो कई लोग आना चाहते थे लेकिन 100% प्योर है तो प्रवेश। तो एक ब्रह्मचारी थे, उनकी ख्याति थी वह केवल दूध पीते, ब्रह्मचारी थे, बड़े तपस्वी थे। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का समाचार तो सर्वत्र फैला हुआ था, कई लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, वो भी कीर्तन और नृत्य में जो दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन। तो इस भक्त ने, इस ब्रह्मचारी पायपान दुग्ध पान करने वाले ब्रह्मचारी ने विशेष निवेदन किया था श्रीवास ठाकुर को। श्रीवास ठाकुर तो मना कर रहे थे किंतु ये हट लेके बैठा, प्लीज जस्ट वंस, यू नो, केवल एक रात को, जस्ट वन, एक रात को मुझे दर्शन के लिए आने दो। और मैं छिपके पीछे रह के छिपके देखूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे अस्तित्व का। हुआ। ओके, फिर मान गए श्रीवास ठाकुर। तो हर रात की भांति सभी पहुंचे, तो पहुंचने वाले में से फिर अद्वैत आचार्य है, बड़े बड़े नाम नामी, और ये सब वैसे साधारण जीव भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने वाले, चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहा है मतलब वो गोलोक में या भगवान के धाम में प्रवेश का जिनको अधिकार है, भगवत धाम में प्रवेश और भगवान के सानिध्य पर जिनका अधिकार है, या ऐसे ही लोग वहां पहुंच जाते थे। तो पहुंच गए कीर्तन, चतुर्दिके महाभाग्यवान वर्ग साथ। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं और रीजन द मूड, नाचना चाहते, नृत्य करना चाहते, अब कीर्तन होगा, तो बड़े उत्साह के साथ थोड़ा वार्म अप चल रहा है, लगा क्रिकेट वार्मिंग अप, अब रात भर कीर्तन होगा, नृत्य होगा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होगा, आनंद के सागर में गोते लगाएंगे। तो सारे उत्कंठित है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली, ये मंत्र भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे, कहो कहो सब कहो, कृष्ण राम मुकुंद,
कृष्ण राम मुकुंद
मुरारी वनमाली,
मुरारी वनमाली।
तो सभी एक स्वर में गा रहे हैं इस मंत्र को भी, इन नामों का उच्चारण कर रहे हैं। सबे मिली गाय हई महाकुतूहली, नित्यानंद गदाधर, नित्यानंद प्रभु वहा है, गदाधर वहा है। परमानंद सुखे केह बाह्य नहीं जाने, तो सारे बाह्य जगत को, बाह्य कोई ज्ञान ही नहीं उनको, संसार है नहीं है, क्या क्या हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, दिस दैट, टोटली अब्लूवियस, कोई मस्त है, बस कीर्तन में मस्त है, मग्न है। शुरुआत हो रही है उस दिन का, वैकुंठ नायक नृत्य करे आपने, वैकुंठ नायक या गोलोक नायक कीर्तन में तैयार, कीर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, बोल हरि बोलो भाइयो, हरि बोलो हरि बोल हरि बोल। अश्रु कंप लोम हर्ष सघन हुंकार, तो आंसू बह रहे हैं महाप्रभु के आंखों से, औरों के आंखों से, शरीर में कंप है, हुंकार चल रहा है। सर्वगिर चुड़ामणि विश्वंभर राय, चुड़ामणि सर्वज्ञो में चुड़ामणि महाप्रभु। रहिया रहिया बले प्रभु विश्वंभर, तो कीर्तन प्रारंभ करना तो है लेकिन प्रारंभ हो नहीं हो रहा है। हर रात्रि की भांति आज आज कुछ नया सा अनुभव, जो अच्छा नहीं है अनुभव, उनको कुछ स्फूर्ति नहीं आ रही है। तो बीच बीच में पूछ रहे हैं, आज ही के न प्रेम योगना पाई निर्भय, आज क्यों वो प्रेम का योग, हर रात्रि का जो भाव, आज क्यों उस वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं,
केह जानी आसी आछे बाड़ीर भीतरे। तो पाय पान करने वाला ब्रह्मचारी कई कई छिप के बैठा है था, किसी ने बताया तो नहीं था, किसी को पता नहीं था, बस दो व्यक्ति जानते थे, खुद ब्रह्मचारी जानता था और दूसरे श्रीवास पंडित जिनका घर था, जिनके साथ उन्होंने स्पेशल पैक्ट। लेकिन महाप्रभु वो भाव उदित नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु कोई है, लगता है कि या कोई आज कुछ गलत व्यक्ति जो 100% प्योर नहीं है, ऐसा किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया होगा, जरूर होगा, जरूर है कोई। तो तभी सोच तो रहे हैं कौन है, कौन है, हु इज इट, कौन है, कौन है। तो फिर श्रीवास ठाकुर को कहना पड़ा, नहीं नहीं कोई पाषंडी वगैरह तो पाखंडी पाषंडी नहीं है, मतलब है, मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं वैसा नहीं है, सबे एक ब्रह्मचारी बड़ सुब्राह्मण, एक ब्रह्मचारी बड़ा अच्छा ब्राह्मण है, सर्व काल पय पान, केवल दूध पीता है, निष्पाप जीवन, ऐसा एक व्यक्ति है। श्रीवास ठाकुर ने डिस्क्लोज किया, इस रहस्य का उद्घाटन किया। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, झट झट बाड़ीर बाहर लैया खर, झट से उसको बाहर फेंक दो, निकाल दो उसको। पाये पाने कभू मोरे के हना ही पाए, और चैतन्य महाप्रभु का स्टेप, कोई दूध पीने वाला मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, केवल कोई दूध ही पी रहा है, ये कोई उसकी पात्रता उसका क्वालिफिकेशन नहीं रहा कि मैं केवल दूध पीता हूं। चंडाले ओ मोहा मोहर शरण यदि लय, सेह मोर मोई तार जानी निश्चय। कोई चांडाल परिवार में भी जन्मा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो मेरी शरण में आता है, मेरी पूरी शरण में, शरणागति है उसकी, तो वो चांडाल चांडाल नहीं मेरे लिए, वो मेरा है और उसके लिए मैं उसका हूं। फिर आगे कहते, सन्यासी ओ मोर यदि ना लय शरण, ऐसा भी संभव है, लेकिन कोई सन्यासी है लेकिन मेरी शरण नहीं लिया हुआ है, दंड तो है, भगवे वस्त्र तो है, सारे बाहर चिन्ह तो है, लेकिन मेरी शरण नहीं लिया हुआ है। से हमोर नहे, वो मेरा नहीं है, सत्य बलि लो वचन, सत्य कहता हूं। आगे कहते मां, गजेंद्र वानर गोपे की तप करिला, अरे अरे ये तपस्वी है तुम कह रहे हो, केवल दूध पीता है, तो उस वानर हनुमान ने कौन सी तपस्या की थी, तो भी मैं उसे प्राप्त हो गया। वो गजेंद्र को जो मोक्ष मिला उसने कौन सी तपस्या की थी, और गोपिया क्या वो अपनी तपस्या केवल दूध पीने के लिए प्रसिद्ध है क्या, इसीलिए उनको मेरा सानिध्य का लाभ होता है। असुरे वो तप करे, कोई असुर भी तप कर सकता है, हिरण्यकश्यपु ने तप किया, रावण बड़ा पंडित विद्वान था और जरासंध बड़ा दानी था, इसीलिए मैं उनको प्राप्त हो सकता हूँ, क्या उनको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा? क्या हुआ? तो चैतन्य महाप्रभु इतना कह के ए, जो भी है उसको बाहर करो, नहीं तो उसको चूर्ण कर दूंगा मैं, उसकी चटनी बनाऊंगा मैं, या उसके चूर्ण बनाऊंगा। तो बेचारा ब्रह्मचारी ये सब सुन रहा था, वो सावधान हो गया और खिड़की से बाहर कूद पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। यार अभी यहां कोई अपील वगैरह का कोई संभव निवेदन तो नहीं कर सकता, कोई ये भाषा बोली जा रही है तो। लेकिन जब वो लौट रहा था अपने घर की ओर, मन ही मन में वो सोच रहा था, हा हा मैंने अपराध तो किया ही, मुझे वहां नहीं प्रवेश करना चाहिए था, आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, लेकिन थोड़ा मैंने जोर दिया और मनवाया श्रीवास ठाकुर और उन्होंने, तो मेरी गलती तो हुई, मैंने अपराध तो किया इसलिए मुझे दंड भी मिला, अच्छा हुआ मुझे दंड मिला। तो पश्चाताप कर रहा था और साथ साथ जितना भी दर्शन मुझे हुआ, अद्भुत देखी लो नृत्य अद्भुत कीर्तन, और आज जो मैंने कीर्तन देखा अद्भुत कीर्तन, और जो दर्शन कीर्तन के समय महाप्रभु ने जो भी थोड़ा नृत्य किया उसका जो दर्शन, मैं भाग्यवान, प्रभु ने विशेष कृपा की, उतना थोड़ा थोड़ा तो सही मुझे दर्शन मिला, और अपराध किया तो दंड भी मिला। ऐसा सोचते हुए जब वो ब्राह्मण अपने आश्रम की ओर लौट रहा था तो क्या हुआ, महाप्रभु वही है श्रीवास ठाकुर के आंगन या घर में, महाप्रभु ने नोट किया अपने घर की ओर लौटता हुआ ब्राह्मण क्या सोच रहा है, ये जान लिया प्रभु ने जहां भी वे थे, अपने अपराध को स्वीकारा, पश्चाताप कर रहा है, दर्शन के लिए उत्कंठित था इसका भी पता चला, जितना भी दर्शन हुआ उसमें प्रसन्न भी था। तो चैतन्य मां ए जाओ 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 जाओ, उस ब्राह्मण को बुला के लिया। तो कुछ भक्त गए पीछे से दौड़े दौड़ते दौड़ते, ए व्हाट हैपन, महाप्रभु ने आपको बुलाया है। तो उस ब्राह्मण ने जब प्रवेश किया उस कक्ष में, तो सभी भक्तों के समक्ष इस ब्राह्मण ने पूरा दंडवत प्रणाम किया है चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पाद पद्म दिला तार मस्तक ऊपरे, और चैतन्य महाप्रभु ने चरण चिन्ह उसके मस्तक पर रखे। और चरण चिन्ह चरणों पर, चरण उसके मस्तक पर अभी रखे है तब पुनः रिपीट तो कर रहे हैं, वो केवल तपस्या से मैं प्राप्त नहीं होता हूं, आई एम विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जान केवल, विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, तपस्या ज्ञान ब्रह्मचर्य गौण है, या इनके ये साधन है, साधन से साध्य अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो बेकार का है वो ब्रह्मचर्य, बेकार की वो तपस्या, कृष्ण से मिला नहीं रही वो तपस्या, बेकार का वो ज्ञान जो भगवान के चरणों में नहीं पहुंचा रहा है जो ज्ञान। तो कृष्णदास वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा वो कहते हैं कि जो भी भक्त इस लीला को लीला का श्रवण करेंगे सही द्विज चरणे अमार नमस्कार, एक तो उस द्विज के उस ब्राह्मण के चरणों में मेरा नमस्कार, तो जो भी इस कथा का इस लीला का श्रवण और फिर चिंतन मनन करेगा, चैतन्य गौरचंद्र प्रभु ताहर मिली भी अवश्य, ऐसे भक्त को ऐसे व्यक्ति को गौरचंद्र जरूर मिलेंगे। हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे घर बैठे बैठे उस लीला का घर में श्रवण करेंगे, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो ऐसे श्रोता को भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। तो ये कीर्तन चलता रहा श्रीवास आंगन में हर रात्रि को, लेकिन एक व्यक्ति थोड़े प्रसन्न नहीं थे कि कीर्तन तो हो रहा है लेकिन कीर्तन केवल इंडोर ही हो रहा है। वे चिंतित व्यक्ति थे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य की प्रेरणा से प्रार्थना से ही तो, या उनकी पुकार जो पहुंच गई वैकुंठ या गोलोक तक, चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी धरातल पर पहुंचे थे। लेकिन अद्वैत आचार्य नहीं सोचा था कि चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य कुछ ही लोगों को मिलेगा। उनकी अपेक्षा तो थी कि सारे संसार में कलौ शूद्र संभव या कलयुग के सारे जीवों को उनका सानिध्य प्राप्त हो, सारे जीव उनका कीर्तन को देखे, दर्शन करे खूब। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ में नहीं कर रहे थे तो अद्वैत आचार्य उनको मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए विशेष निवेदन करते, प्रभु प्रभु प्लीज इसको आप द्वार खोलिए, ये भंडार इसका बंटवारा होना चाहिए, इसका वितरण होना चाहिए। आप वैसे भी नमो महावदान्य वदान्य हो, उदार हो, दान दाता हो, तो कुछ सीमित लोगों को ही क्यों, इसका लाभ सभी को होना चाहिए लाभ इसका। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समय से तो कीर्तन को लिमिटेड नहीं रखे श्रीवास ठाकुर यांगन से, फिर मैदान में उतर गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और फिर अपने असंख्य भक्तों के साथ सारे नदिया में, सारे नवद्वीप में कीर्तन होने लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस गीत का वर्णन, उस कीर्तन का वर्णन एक गीत में किए हैं। पूरा तो हम लोग नहीं गा पाएंगे लेकिन शुरुआत है उसकी। उदिलो अरुण पूरब भाग द्विजमणि गौर अमनि जागे
उदिल
अरुण पुरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे मतलब प्रातः काल में सूर्योदय के समय उदिलो अरुण अरुण सूर्य पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है उस समय भक्त समूह लैया साथे गेल नागर राजे भक्त समूह लैया साथे गेल नागर तो भक्तों का समूह लेके बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का समूह लेके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गए सारे नगरों में सारे ग्रामों में कीर्तन करते हुए थथाई बाजल खोल खोल मतलब ये खोल मृदंग थथाई इसका आवाज आ रहा है कैसा थथाई बाजलो खोल घन घन ताहे झांझेर रो झांझ बज रहा है आ जान प्रेमे ढल सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे प्रेमे ढल सोनार अंग चरणे नुपुर तो इस कीर्तन के मध्य में या कीर्तन के आगे महाप्रभु स्वयं प्रेमे ढल सोनार अंग सोनार सुवर्ण जैसा उनका अंग गौरांग तो डोल रहे हैं कीर्तन में चरणे नुपुर बाजे उनके चरणों में नुपुर है नुपुर बज रहे चरणों में मुकुंद माधव यादव हरि मुकुंद माधव यादव हरि मुकुंद
माधव यादव हरि
बले न बोलो रे वदन भरी आ भगवान के नामों को पुकारो कैसे वदन भरी मुख भर के भगवान का नाम कैसे मुख भर के वदन भरी चीव चीव नहीं चिड़िया चीव चीव कर रही है ऐसे नहीं गुलाब जामुन खाने के समय मुख कब भरता है फिर मुख खोलते हैं गुलाब जामुन बड़ा है तो पूरा मुख नहीं खोलेंगे तो अंदर नहीं फिर आधा ही जा सकता है आधा बाहर या अंदर जाएगा तो वदन भरी वैसा मीछे नींदब से गेलो रे राती दिवस शरीर साजे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कई तो कीर्तन में है और कुछ लोग प्रचार भी कर रहे हैं और वे कह रहे हैं, हे लोगों, आप अपनी रात को बिताते हो सोने में, रात्रि को कैसे बिताते हो, सोने खाने पीने में बिताते हो, और जब जग जाते हो तो शरीर साजे, शरीर का सजावट, शरीर का श्रृंगार, मेकअप इत्यादि आप करने लगते हो। इस प्रकार तुम्हारा जीवन बीत रहा है, रात सोने में और दिन शरीर को सजाने में। ए मान दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावन के हो, भावन के हो। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करो। कैसे सदुपयोग करे? नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताका आपन काजे, यो करी जतने तुम्ही ताका आपन। नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताको आपन काजे। अपने कार्य करते समय भी नाम लो, या कार्य की ओर जा रहे हो तो कीर्तन करते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इस संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक, संस्थापक साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है। तो 500 वर्ष पूर्व उनका किया हुआ कीर्तन ही, कीर्तन से उत्पन्न जो भी कंपन है, वही आज भी लोगों को, भक्तों को सारे संसार भर में नचा रहा है। वही प्रेरणा का स्रोत है। सारे नवद्वीप भर में कीर्तन होने लगे। एक दिन कीर्तन करते करते जा रहे थे गोद्रुम द्वीप में, नवद्वीप में से एक द्वीप गोद्रुम द्वीप। तो कीर्तन बहुत समय से हो रहा था, कीर्तन करते करते उसमें परिश्रम भी होता है, शारीरिक भी,
भक्त कुछ थके और महाप्रभु कुछ महसूस कर रहे थे कि भक्त कुछ भूखे भी है, तो जहां से कीर्तन मंडली जा रही थी वहां एक आम के बगीचा था, तो महाप्रभु वहां प्रवेश किए। और उन्होंने एक आम का बीज बोया, असंख्य भक्त, ट्री प्लांटेशन कभी कभी होता है, तो यह स्वयं महाप्रभु एक आम का बीज बोए। किसी को पता नहीं चल रहा था क्या उद्देश्य है, अब क्या होगा, लेकिन भक्त जैसे देख रहे थे, भक्तों के देखते देखते ही वो बीज से अंकुर निकला, उसका हुआ पौधा और उसकी शाखा उपशाखा फूल भी लग गए और फलों से लद भी गए वो शाखाएं। और ये सब कुछ हुआ एक दो मिनटों में हो गया। कई साल लगते हैं, आप जानते हो आम का बीज, कई सालों के बाद फल मिलता है। तो महाप्रभु ने सारा काल उनके हाथ में है, सारा संसार ही कालोस्मी, तो कुछ क्षणों को या कुछ मिनटों को उन्होंने एक्सपैंड किया और कई सालों में जो विकास होता है, उत्पत्ति और फल और फूल से भर जाता है वृक्ष, वो सारा दृश्य भक्तों के सामने देखते देखते ही। और फिर महाप्रभु ने अपने हाथों से फल तोड़े, भक्तों को बिठाया, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, महाप्रसादे गोविंदे प्रार्थना हो गई। और सबको एक 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 जितने भक्त थे उन सबको एक एक आम का फल मिला। लेकिन कैसा था वो आम? उस आम में न तो छिलका था न तो गुठली थी, बस रस ही रस था। सभी भक्तों ने शुरुआत में सोचा होगा बस एक ही आम, ओनली वन, लेकिन वो एक आम भी पूरा नहीं खा पाए, पेट भर गया, एक आम से पेट भर गया। तो प्रभु की रचना से वो वृक्ष एक साल के लिए वहां रहा। तो कीर्तन पार्टी जब भी वहां से गुजरती तो वहां के फल नाचो गाओ और खाओ, यही है कृष्ण भावना, बड़ी सरल है। क्या क्या करना है? एक तो नाचो गाओ और थोड़ा थक जाते हो तो खाओ, फिर बैठ के कुछ कथा सुनो सुनाओ, यही जीवन है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक दिन कीर्तन कर रहे थे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में, गोद्रुम द्वीप गो मतलब गाय, ध्रुव मतलब वन या वृक्ष। उस वन की खासियत, वन या द्वीप की खासियत, वहां कई सारे ग्वाले रहते थे और उनकी सारी कई सारी गायें भी थी। जैसे गोकुल वृंदावन में गोपालक गो, तो वहां कई सारे ग्वाले और कई सारी उनकी गाय। तो महाप्रभु जब वहां से जा रहे थे तो उस समाज के कम्युनिटी के लीडर थे, क्या नाम, भीम, भीम उनका नाम था, भीमा भीम। तो कीर्तन मंडली जा रही थी, चैतन्य महाप्रभु सामने थे, ऐसा कीर्तन जमा था। तो कीर्तन जब हो रहा तो सारा ब्रह्मांड भर गया, तो कीर्तन की जो ध्वनि है सारे ब्रह्मांड भर में फैल गई। कई सारे मृदंग बज रहे थे, कई सारे करताल चल रहे थे और बाहुतुले, आज भक्तों ने अपने बाहुतुले नाचिया नाचिया बेरा ओरे, और भक्तों का भाव। तो उस दिन ये भीम जो समाज के मुखिया थे, उन्होंने कहा कि आज का मध्याह्न का भोजन आप यही कीजिए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, सभी आ सकते हैं, कोई कमी नहीं है। तो मध्याह्न के भोजन की वहां व्यवस्था हो गई और ऐसे पकवान खिलाए, अधिकतर दूध के बने हुए कई सारे मिष्टान्न थे। प्रभु को अपने इस वृंदावन लीला का, गोकुल लीला का, माखन चोरी का स्मरण हुआ। वहाँ दूध के कई सारे पदार्थ उनको वृंदावन में, गोकुल में खाने को मिलते, आज मिल रहे थे वहाँ। तो प्रसाद पाके जब वे प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर, इतने में एक ग्वाला सामने आया और कहा, प्रभु प्रभु एक समस्या है। व्हाट इज इट, क्या है, कहो क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि देखो, आगे जो दह है, एक तालाब है, तुम्हारी गाय स्वाभाविक है कि वहां जाके जल पिएगी। एक गाय तो आ गई। तो लेकिन क्या कहा जाए, इस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, क्रोकोडाइल। तो जिसके भय से गाय वहां पहुंच नहीं पाती और जल नहीं पीती, तालाब से कुछ दूर रह के ही भय से कि गाय है कुछ भय से भी तो मैंने, महाप्रभु ने सुन लिया क्या समस्या थी, क्या उलझने थी, उलझन थी। तो महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने क्या देखा कि वो मगरमच्छ जल के बाहर आ गया और केवल बैठा नहीं रहा, आगे आ रहा है और सीधे महाप्रभु की ओर आ रहा है। तो लोगों को पता भी क्या बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, कुछ भयभीत भी थे, किंतु हुआ कुछ और ही। ये मगरमच्छ आया, आगे आया, आगे आया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को उसने स्पर्श किया और नतमस्तक हुआ। महाप्रभु के चरणों को स्पर्श इस मगरमच्छ का होते ही और मगरमच्छ का शरीर नहीं रहा, एक देव कुमार बन गया, एक और फिर उस देव कुमार स्वर्ग के देवता का एक पुत्र कुमार, देव कुमार, उसने अपने पूर्व जन्म का थोड़े में इतिहास सुनाया। उसने कहा कि मैं पूर्व जन्म में वृंदावन में था, तो वहां दुर्वासा मुनि सोए थे और मैं थोड़ा नटखट था, तो दुर्वासा मुनि कितनी सारी लंबी जटा मैंने देखी, तो मैंने कुछ सोचा, मैं एक कैची लेके आया और दुर्वासा मुनि सोए ही थे, मैंने उनके शिखा को काट दिया, चोटी को काट दिया और ये महाशय मुनि दुर्वासा मुनि जब जगे, उसी समय तत्क्षण वो जग गए, तो उन्होंने शाए तुम मगर मच्छ बन जाओ। तो मैं डर गया, मगर मच्छ नहीं नहीं प्लीज क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, नहीं नहीं, मैंने जैसे कहा वैसा ही होगा, किंतु तुम खूब क्षमा याचना मांग रहे हो, कर रहे हो, तो एक बात हो सकती है, तुम और कहीं के मगरमच्छ नहीं होंगे, तुम नवद्वीप में मगरमच्छ बन के जन्म लोगे और जब महाप्रभु प्रकट होंगे उनका दर्शन और उनका स्पर्श जब होगा तो पुनः तुम देव कुमार बन जाओगे। तो फिर उसने महाप्रभु की प्रदक्षिणा की, नमस्कार करके वो देवलोक के लिए प्रस्थान किया उसने। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन संकीर्तन आंदोलन फैल रहा था, अधिक अधिक लोग जुड़ रहे थे, लेकिन इस बात से उस समय के शासक मुस्लिम रूल था 500 वर्ष पूर्व उस बंगाल में, उनका कैपिटल तो नदिया, तो वहां के चांद काजी उन्होंने ऑर्डर पुलिस एंड सभी फोर्स को, अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालों को, तुम कहीं कीर्तन होते हुए देखते हो तो स्टॉप इट, उसको रोकना है, नदिया में कीर्तन नहीं होगा। तो चांद काजी के लोग सिपाही आर्मी जो भी सर्वत्र घूमते फिरते और कई कीर्तन हो रहा है तो इसको रोकते, वो नहीं मानते तो उनकी तंगड़ी तोड़ते, रीढ़ की हड्डी तोड़ते, उनको कोई दया नहीं थी, और मृदंग को फोड़ते, ऐसे कई सारे अनुभव इस प्रकार के जो विघ्न आ रहे थे
कई सारे भक्तों के कई सारे नगरों में ग्रामों में अनुभव, ये समाचार पहुंच गया चैतन्य महाप्रभु के पास। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोध में आए, चांद काजी जो कौन होता है संकीर्तन को रोकने वाला, कीर्तन होता रहेगा, सरकार के इस आदेश को हम नहीं मानेंगे, नॉन कॉपरेशन असहकार चळवळ आंदोलन छेड़ेंगे। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हमारे देश में भी असहकार ब्रिटिश राज के विरोध में चलता रहा, वैसे चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व भी इस आंदोलन को छेड़े थे असहकार। चांद का जी रोकना चाहता है, नहीं कीर्तन नहीं रुकेगा, कीर्तन होता रहे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस संदेशा पहुंचाया सारे नगरों में ग्रामों में, सब भक्त आज श्रीवास ठाकुर के घर पर एकत्रित होंगे, तो असंख्य भक्त श्रीवास ठाकुर के घर पर पहुंचे मृदंग लेके करताल लेके और टॉर्चेस। सायंकाल को कीर्तन प्रारंभ होके चांद काजी के कोठी की ओर जाएगा। तो कीर्तन प्रारंभ हुआ और उसका वर्णन बड़ा विस्तार बड़ा मधुर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर किए, कई सारे बड़ा अध्याय है ऐसा कीर्तन महासंकीर्तन। तो महाप्रभु स्वयं समक्ष थे, कीर्तन और नृत्य कर रहे थे और साथ में कुछ नृसिंह भगवान का कहो जैसा क्रोध भी था, विनाशाय च दुष्कृताम, आज विनाश होगा, इस कीर्तन आंदोलन को रोकने वाला कोई भी रोकता है उसका विरोध होगा, उसका विनाश होगा। तो कीर्तन करते 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 अब चांद काजी की कोठी की ओर जा रहे थे और चांद काजी को पता ही चल गया अब हमको निशाना बनाए हैं ये कीर्तन मंडली और उनके लीडर निमाय या गौरांग, कि छिपने का प्रयास, लेकिन कहाँ जा सकते, छिप छिप के कहाँ जा सकते थे। तो बड़े भयभीत थे, अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब क्या, अब क्या होगा। तो कीर्तन मंडली पहुंच गई तो चांद काजी स्वयं ही बाहर आए और महाप्रभु के साथ द्वार पर ही मुलाकात हुई और वहां बैठ के कुछ संभाषण भी हुआ, भाषण हुआ। ये चांद काजी कह रहा था ने, आपके पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा को मैं भली भांति जानता हूं, ऐसा ऐसे कोई संबंध स्थापित करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन महाप्रभु तो क्रोध में थे। इतने में अब हम चांद काजी ने अपना कुर्ता खोल के बटन खोले और दिखाया महाप्रभु को, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो। तो वहां नाखून के चिन्ह थे। तो चांद काजी ने कहा, कल रात की बात है, मैं जब बिछाने पर सोया था पूरा अंधेरा छाया था, किंतु ऐसा ब्रिलियंट लाइट, ऐसा तेजस्वी प्रकाश मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं देखा था इतना प्रकाश। शुरुआत में तो प्रकाश ही देखा, बाद में एक व्यक्ति मेरी ओर ही आगे बढ़ रहा था, मैं उस व्यक्ति को जानने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ आधा मनुष्य आधा क्या, ये शेर है, जानवर है, क्या है। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, मेरे पास आया, और ऐसी गर्जना की, ऐसा डराया मुझे, धमकाया और कहा कि तुम, उन्होंने अपने नाखून रखे मेरे वक्ष स्थल पर और कहा कि आज तो तुमको छोड़ता हूं, पुनः अगर तुमने प्रयास किया मेरे कीर्तन को, आंदोलन को रोकने का प्रयास किया तो कल तुम्हारी चटनी बनाऊंगा, समझे? तो वैसे आपके चांदका जी ने कहा आपके यहां पधारने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो मैंने दृश्य देखा, जो अनुभव किया और मेरी जान खतरे में थी और मुझे जो वार्निंग मिली उसी समय मैंने संकल्प किया था, आज से मेरे राज में कीर्तन को नहीं रोका जाएगा, मेरे राज में खूब कीर्तन होगा। मैं आपको बताने वाला ही था लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, ये मेरी ओर से आपके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी है, आप खूब कीर्तन करो। तो रात्रि के समय जो आए थे कौन आए होंगे? नरसिंह भगवान, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान। तो फिर चांद का जी उस समय से वैष्णव हो गया, भक्त हो गया, कीर्तन को कभी नहीं रोका चांद का जी ने। तो उस चांद का जी की समाधि बनी हुई है मायापुर में, जो मथुरा है, मायापुर का मथुरा, और सारे वैष्णव जो मायापुर नवद्वीप जाते हैं चांद का जी का दर्शन करने जाते हैं, चांद का जी के समाधि का, चांद का जी के समाधि पर जाकर नतमस्तक होते हैं और चांद का जी के समाधि की प्रदक्षिणा लगाते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने चांद का जी जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को भी उसके जीवन में क्रांति, उसकी जान तो नहीं ली। तो ये चांद का जी कौन थे? कंस थे, कंस, कृष्ण लीला के कंस अब बने थे चांद का जी। वहां तो कंस का वध हुआ है लेकिन यह अलग प्रकार की ट्रीटमेंट, उसी शरीर में रखा लेकिन उसका असुरी प्रवृत्ति का विनाश किया। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य है चैतन्य महाप्रभु में और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल अगर आप आओगे, संभावना है कोई आना चाहेगा कल, तो मध्य लीला, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की लीला है और फिर महाप्रभु नवद्वीप से प्रस्थान करेंगे और सारे भारतवर्ष की यात्राएं और उनका परिभ्रमण होगा। उस संबंधित जो लीलाएं हैं उसका संक्षिप्त वर्णन या जैसा यथासंभव समय के अनुसार कल होगा। कल गौर कथा का अंतिम, तृतीय और अंतिम सत्र है, तो पुनः मिलते हैं। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।